पहला अध्याय विषय प्रवेश। पहला वैदिक युग का अभिप्राय। यह बात निर्विवाद है कि वेद विश्व साहित्य के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। आर्य लोग उन्हें अनादि, अपरुषेय और ईश्वरकृत मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि प्रारंभ में केवल एक प्रजापति की ही सत्ता थी। उसने प्रजा उत्पन्न करने की कामना की और इस प्रयोजन से तप किया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यु, ये तीन लोक उत्पन्न हुए। इन तीन लोकों को अभितप्त कर प्रजापति ने अग्नि, वायु और सूर्य को उत्पन्न किया और फिर उन द्वारा तीन वेदों की उत्पत्ति प्रजापति द्वारा की गई। अग्नि द्वारा ऋग्वेद की, वायु द्वारा यजुर्वेद की और सूर्य द्वारा सामवेद की। एक अन्य प्रसंग में शतपथ ब्राह्मण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को महान भूत अर्थात परमेश्वर का निःश्वसित कहा गया है। वेदों की अंतःसाक्षी द्वारा भी यह सूचित होता है कि वह जो अशरीरी, शुद्ध, निष्पाप, सर्वव्यापक, स्वयंभू मनीषी परमेश्वर है, जनता के लिए सब पदार्थों व विषयों का यथा तथ्य रूप से ज्ञान उस द्वारा प्रदान किया गया था। आर्य चिंतकों के अनुसार यह यथार्थ ज्ञान वेद ही है, जो ईश्वर कृत है और जिनका प्रकाश ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु और आदित्य नामक ऋषियों द्वारा किया था, पर आधुनिक वेदों के इस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वे उन्हें मनुष्यकृत मानते हैं। वेदों के प्रत्येक सूक्त व ऋचा के साथ उसके ऋषि और देवताओं के नाम दिए गए हैं। वैदिक सूक्तों व मंत्रों की रचना इन ऋषियों द्वारा ही की गई थी। वैदिक ऋषियों में गुत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ मुख्य हैं। इन छह ऋषियों व इनके वंशजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मंडलों की रचना की थी। आठवें मंडल के ऋषि कानव और अंग्रिस वंशों के थे। प्रथम मंडल के 50 सूक्त भी कानव वंश के ऋषियों द्वारा रचे गए थे। अन्य मंडलों एवं प्रथम मंडल के शेष सूक्तों की रचना विविध ऋषियों द्वारा की गई थी। जिन सबके नाम इन सूक्तों व मंत्रों के साथ में मिलते हैं, इन ऋषियों में वैवस्वत, मनु, सिब्बी, औसिनर, प्रतरदन, मधु, छंदा और देवापी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इनके संबंध में पुराणों तथा महाभारत से भी बहुत सी बातें ज्ञात होती है। जो विद्वान वेदों को ईश्वरकृत मानते हैं, उनके मत में वैदिक ऋषि सूक्तों के रचयिता न होकर दृष्टा मात्र थे। उन द्वारा मंत्रों के अभिप्राय का दर्शन किया गया था। ऋषि कहते ही दृष्टा को है। ऋषि अर्थात ऋषिर्दर्शनार्थ। यदि वेदों को अनादि और अपरुषेय मान लिया जाए तो वैदिक संहिताओं को इतिहास के लिए प्रयुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस दशा में वैदिक युग इतिहास के उस काल को कहा जाएगा जबकि लोग वेदों की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन किया करते थे। उस प्राचीन काल के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का प्रतिपादन करने के लिए वेदों का प्रयोग अवश्य किया जा सकेगा, क्योंकि तब लोगों का जीवन वेदों के अनुरूप था। पर उस युग की राजनीतिक घटनाओं तथा सांस्कृतिक विकास आदि का निरूपण करने के लिए वेदों को आधार बना सकना संभव नहीं होगा। इतिहास के प्रयोजन से वेदों का उपयोग किस अंश तक व किस प्रकार किया जा सकता है, इस प्रश्न पर हम अगले प्रकरण में विचार करेंगे। पहले हमें यह स्पष्ट करना है कि आधुनिक इतिहास लेखकों को भारतीय इतिहास का कौन सा काल वैदिक युग के रूप में अभिप्रेत है। जिस प्रकार वैदिक संहिताओं में प्राचीन आर्यों की धार्मिक अनुश्रुति संग्रहित है, वैसे ही पुराणों में राजनीतिक अनुश्रुति को संकलित किया गया है। अयोध्या, विदेह, पौरव, काशी, कारूस आदि आर्य राज्यों के राजाओं की वंशावलियाँ पुराणों में दी गई हैं, जिनका प्रारंभ मनु से हुआ है। इन वंशावलियों में अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं की वंशावली सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें मनु से लगाकर बृहद्वल तक 64 राजाओं के नाम दिए गए हैं। अयोध्या का राजा बृहद्वल हस्तिनापुर के कौरव राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों का और यादव वंशी कृष्ण का समकालीन था। इस प्रकार मनु से प्रारंभ कर महाभारत के समय तक अयोध्या में 64 राजा हुए थे। हस्तिनापुर के पांडव राजाओं की वंशावली महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद तक भी दी गई है। पांडवों के बाद वहां परीक्षित और जन्मेजय ने शासन किया था और उसके दो पीढ़ी बाद अधिसीम कृष्ण ने। पुराणों से जहां भारत के प्राचीन राज्यों के राजवंशों और राजाओं का परिचय मिलता है, वहां साथ ही कतिपय ऋषियों और ऋषि वंशों के संबंध में भी उनसे जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से अनेक ऋषि ऐसे भी हैं जिनके नाम वैदिक सूक्तों और मंत्रों के ऋषियों के रूप में दिए गए हैं। ये ऋषि किस राजवंश के किस राजा के समकालीन थे, इस विषय में भी कुछ संकेत पुराणों में विद्यमान हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सब सूक्तों के ऋषि गुप्तस्मद हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार ये काशी के राजवंश के संस्थापक राजा काश के भाई थे और यह राजा काश अयोध्या के राजवंश की 11वीं पीढ़ी का समकालीन था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ऋषि विश्वामित्र अयोध्या के राजवंश की 33वीं पीढ़ी के राजा हरिश्चंद्र के समकालीन थे और छठे मंडल के ऋषि बृहस्पत्य भारद्वाज 54वीं पीढ़ी के। 8वें मंडल के ऋषि कण्व का समय भारद्वाज के एक पीढ़ी बाद है। ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र के समकालीन थे और इस प्रकार उन्हें भी उस समय का मानना होगा जबकि अयोध्या पर राजा हरिश्चंद्र का शासन था। कितने ही अन्य वैदिक ऋषियों का भी पौराणिक साहित्य में उल्लेख है और उसमें ऐसे संकेत भी विद्यमान हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि वे किस राजा के समकालीन थे। वैदिक ऋषि मुदुच्छंदा अयोध्या के राजा हरिश्चंद के समय में, ऋषि लोपामुद्रा राजा अंशुमान के समय में, ऋषि दृगुत्तमा राजा सगर के समय में और ऋषि वामदेव राजा सहदेव उत्तर पंचाल के समय में हुए थे। ऋषि प्राचीन राजवंशों के कतिपय राजा एवं उनसे संबंध कतिपय व्यक्ति भी वेद मंत्रों के ऋषि हैं। ऋग्वेद के 5 सूक्तों मंडल 8 सूक्त 27 से 31 के ऋषि वैवस्वत मनु हैं और पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जिन द्वारा भारत में राज्य संस्था का सूत्रपात किया गया था और जिनसे मानव राजवंश का प्रारंभ हुआ था, मनु की पुत्री इला थी जिसके वंशजों ने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। प्रतिष्ठान का राजा एल पूर्वा भी ऋग्वेद का एक ऋषि है। मनु के अन्यतम पुत्र नाभानिष्ट ने वैशाली में एक पृथक राजवंश का आरंभ किया था। यह मानव नाभानिष्ट भी एक वैदिक ऋषि हैं। मनु के अन्य पुत्र सार्यात को भी वैदिक ऋषियों के स्थान प्राप्त हैं। नाभानिष्ट के वंशजों में भालंदन और बातश्रपी भी वैदिक ऋषि हैं। आर्य समाजों की जिन पीढ़ियों को का पौराणिक अनुश्रुति द्वारा परिचय मिलता है, मनु, नामनिदिष्ट, एल पूर्वा और बातश्री आदि उनमें प्रारंभ के राजाओं में से थे। इनके बनाए हुए या दर्शन किए हुए बहुत ही कम मंत्र ऋग्वेद में संकलित है। गुत्समद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जिन ऋषियों के मंत्र ऋग्वेद में बहुत बड़ी संख्या में है, उनका समय प्रायः 26वीं पीढ़ी से शुरू कर 40वीं पीढ़ी तक का है। इसके बाद के समय के भी कतिपय व्यक्ति वैदिक ऋषि हैं पर उनकी संख्या अधिक नहीं है। ऐसी ऋषियों में देवापी का नाम उल्लेखनीय है जो पौरव वंश के राजा शांतनु का भाई था। देवापी की भी कतिपय ऋचाएँ ऋग्वेद में संकलित हैं जिनमें शांतनु का भी नाम आया है। वैदिक ऋषियों के संबंध में जो यह विवरण हमने प्रस्तुत किया है, इससे उस काल का एक धुंधला सा चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है, जबकि वैदिक सूक्तों की रचना या दर्शन का प्रारंभ हुआ था। वैवस्वत मनु के समय में इनका निर्माण या दर्शन शुरू हो गया था, जो राजा शांतनु जो भारत के कौरव पांडवों के पितामह थे, के समय तक जारी रहा। महाभारत के समय में या उससे कुछ पूर्व महर्षि वेदव्यास द्वारा इन सूक्तों एवं ऋचाओं को संहिता के रूप में संकलित कर दिया गया। जिस काल में इनका निर्माण या दर्शन हुआ, उसी को भारतीय इतिहास का वैदिक युग कहा जाता है। इसका प्रारंभ वैवस्वत मनु के समय से हुआ था और यह राजा शांतनु के समय में समाप्त हो गया था। जो विद्वान वेदों को अपरुषेय व ईश्वरकृत मानते हैं, उन्हें भी वैदिक युग के इस अभिप्राय से कोई भी प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुत्समद, नाभानिदिष्ट, वशिष्ठ आदि ऋषियों को वे वेद मंत्रों का दर्शन करने वाला या उनके अभिप्राय को स्पष्ट करने वाला प्रतिपादित करते हैं। जिस काल में इन ऋषियों द्वारा ईश्वरकृत वैदिक ऋचाओं का दर्शन कर उनके अंतर्हित अभिप्राय को प्रकट किया गया, उसे वैदिक युग मानना सर्वथा उचित व युक्तिसंगत है। पर प्रश्न यह है कि वैवस्वत मनु से शुरू कर देवापी शांतनु तक का जो यह वैदिक युग है, तिथि क्रम की दृष्टि से उसके लिए कौन सा समय निर्धारित करना होगा। शांतनु कौरव पांडवों के पितामह थे, अतः उनका समय महाभारत युद्ध से 2 पीढ़ी 50 वर्ष के लगभग पूर्व होनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि महाभारत युद्ध का कौन सा समय था। यह विषय अत्यंत विवादग्रस्त है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार यह युद्ध ईस्वी सन से 3000 वर्ष के लगभग पहले लड़ा गया था, पर आधुनिक विद्वान प्रायः इसे स्वीकार नहीं करते। उनके मत में महाभारत का काल 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग था। कतिपय विद्वानों ने इस युद्ध को के काल को 1500 ईसा पूर्व के लगभग प्रतिपादित किया है। इस समस्या पर हमने वैदिक साहित्य का परिचय देते हुए कुछ अधिक विशद रूप से प्रकाश डाला है। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त है कि वैदिक युग को महाभारत युद्ध से 64 पीढ़ी पूर्व प्रारंभ हुआ मानना उचित होगा। राजाओं के शासन काल को औसतन 20 वर्ष के लगभग स्वीकार किया जाता है। यदि वैवस्वत मनु से राजा शांतनु तक 62 पीढ़ियां मान ली जाए, जैसा कि पुराणों की वंशावलियों से सूचित होता है, और एक पीढ़ी के शासन काल को 20 वर्ष समझा जाए, तो वैदिक युग का कुल समय 1800 या 2 वर्ष के लगभग मानना होगा। पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुराणों की वंशावलियां पूर्ण नहीं हैं। उनमें विविध राजवंशों के महत्वपूर्ण राजाओं के ही नाम दिए गए हैं। इस दृष्टि से वैदिक युग की अवधि अधिक भी हो सकती है। प्राचीन भारतीय तिथि क्रम का विषय अत्यंत विवादग्रस्त है। वैदिक साहित्य की रचना काल पर विचार करते हुए इस ग्रंथ के 4th अध्याय में इस संबंध में कुछ अनप्रकाश डाला जाएगा। वैदिक संहिताओं से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि जो ग्रंथ साहित्य हैं और जिसे वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत किया जाता है, उसकी रचना प्रायः महाभारत काल में या उसके कुछ समय बाद हुई थी। शतपथ ब्राह्मण में राजा का जन्मेजय और परीक्षित के नाम आए हैं, जिनका समय महाभारत युद्ध के बाद है। उपनिषदों में केकय के राजा अश्वपति का उल्लेख है। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार जिसका समय भी महाभारत युद्ध के बाद है। अतः इस साहित्य की रचना का समय महाभारत के पश्चात रखना होगा, क्योंकि ब्राह्मण, आरण्यकों, उपनिषदों और सूत ग्रंथों का निर्माण उस काल में हुआ, जबकि मंत्र द्रष्टा ऋषियों की परंपरा समाप्त हो चुकी थी। इस कारण उनके काल को उत्तर वैदिक युग कहा जाता है। इस इतिहास में हम वैदिक युग के साथ साथ उत्तर वैदिक युग पर भी प्रकाश डालेंगे। दूसरा, वैदिक संहिताओं का इतिहास के लिए उपयोग। जहाँ तक ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों और कल्प आदि वेदांगों का संबंध है, इतिहास के लिए उनका उपयोग करने में किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं है। पर जो विद्वान वेदों को ईश्वरकृत अनादि व अपरुषेय मानते हैं, वे यह स्वीकार नहीं करते कि इतिहास के लिए वैदिक संहिताओं का को भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जिन वेद मंत्रों में किसी ऐतिहासिक घटना का संकेत मिलता है, ये विद्वान उनका अर्थ अध्यात्म परक या अन्य प्रकार से करके यह प्रतिपादित करते हैं कि वैदिक मंत्रों में इतिहास की तलाश करना अर्थ का अनर्थ करता है। उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के चौथे मंडल के 15वें सूक्त के उन मंत्रों को लीजिए जिनमें ऋषि वामदेव हैं और अश्विनी तथा सहदेव नामक जिनके देवता हैं। ये मंत्र निम्नलिखित हैं: बुद्ध धम्मनाम हरिभ्याम कुमार सा देव्य अच्छा नहूत उद्रम उत्तया यज्ञता हरि कुमारात सा देव्यात प्रयता सद आददे एस वाम देवावश्विना कुमार सा देव्या दीर्घायुरस्तु सोमक तब तम युवम देवावश्विना कुमारम साह देव्यम दीर्घायुषम कृणोतन। वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं तथा प्राचीन भारत के राजाओं के संबंध में संकेत व सूचनाएं विद्यमान हैं। यह मानने वाले विद्वान इन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार करेंगे: जब सहदेव के पुत्र कुमार ने दो घोड़े देने की इच्छा से मेरा ध्यान किया तो मैं ऐसे उठ खड़ा हुआ मानो मुझे पुकारा गया हो। मैंने सहदेव के पुत्र कुमार से उन घोड़ों को तुरंत ग्रहण कर लिया जिन्हें कि उसने मुझे भेंट किया था। हे अश्विनी देवो, सहदेव का पुत्र यह कुमार सोमक आपकी कृपा से दीर्घायु हो। अश्विनी देवो ने सहदेव के पुत्र उस युवा कुमार को दीर्घायु कर दिया। इन मंत्रों में एक ऐसे सहदेव का उल्लेख है जिसका पुत्र सोमक था। इस कुमार सोमक ने ऋषि वामदेव को दो घोड़े दान में दिए थे जिन्हें प्राप्त कर ऋषि ने अश्विनी देवों से उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना की थी। अश्विनी देवों को की कृपा से सहदेव सोमक दीर्घायु को प्राप्त करने में समर्थ हुआ था। पौराणिक अनुस्मृति के अनुसार सहदेव उत्तर पांचाल का राजा था और हस्तिनापुर के पौरव राजा संवरण का समकालीन था। वह महाभारत से 24 पीढ़ी पहले हुआ था। पुराणों के अनुसार भी सहदेव का पुत्र सोमक था जो अपने पिता के पश्चात उत्तर पांचाल के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। ऐतिहासिक संप्रदाय के विद्वान जिस ढंग से इन वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि इन मंत्रों में सहदेव कुमार सोमक के दान की स्तुति है तथा दान प्राप्त करने वाले ऋषि वामदेव ने उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना अश्विनी से की है। एक अन्य विद्वान सहदेव और सोमक शब्दों को किन्हीं व्यक्तियों के लिए रूढ़ी न मानकर उनका यौगिक अर्थ करते हैं। उनके मत में सहदेव का अर्थ है ये देव सह वर्तन्ते, जो देवों या विद्वानों के साथ रहते हों, और सोमक का अर्थ है सोम इव शीतल स्वभावो यस्य, जिसका स्वभाव सोम या चंद्रमा के समान शीतल हो। इन विद्वानों के अनुसार विद्वानों या देवों के साथ निवास करने वाले शीतल स्वभाव के शिष्य द्वारा इन मंत्रों में यह प्रार्थना की गई है कि उसे इस ढंग से बोध कराया जाए ताकि वह दुर्गामी अश्वों के समान शीघ्र विद्या के पार उतर जाए। विद्वान अध्यापक ने कुमार शिष्य की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे शीघ्र ही सब विद्याओं में निष्णात कर दिया। साथ ही उन्होंने ऐसा यत्न भी किया जिससे कि शीतल स्वभाव वाला कुमार विद्यार्थी दीर्घायु प्राप्त करने में समर्थ हुआ। वेद मंत्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के कोई संकेत हैं या नहीं, इस संबंध में कतिपय प्राचीन आचार्यों के मंतव्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। निरुक्तकार यास्काचार्य ने भी कुछ वेद मंत्रों में इतिहास प्रदर्शित किया है। ऐसे मंत्रों व सूक्तों में ऋग्वेद का वह सूक्त उल्लेखनीय है जिसमें कि देवापी और शांतनु के संबंध में अनेक ऐतिहासिक बातों का संकेत विद्यमान है। यथा देवापी का शांतनु का पुरोहित होना और उस द्वारा प्रचुर दान दिया जाना। तत्रेतिहास समाचते कहकर यास के यह स्वीकार करते हैं कि ऐसे सूक्तों व मंत्रों में इतिहास विषयक सूचनाएं विद्यमान हैं। वृद्ध देवता में आचार्य शौनक ने भी वेदों के कुछ सूक्तों को इतिहास विषयक माना है। यास्क ने इत्यतिहासिका कहकर जिन प्राचीन ऐतिहासिक मंतव्यों को उद्धृत किया है उनसे तो वैदिक मंत्र इतिहास परक हैं, यह मत स्पष्टतया सूचित हो जाता है। यद्यपि यास्क ने उससे अपनी असहमति प्रकट की है। वृत्र कौन था? इस संबंध में ऐतिहासिक संप्रदाय के प्राचीन आचार्यों का यह मत था कि त्वष्ट्रा असुर को ही वृत्र कहा जाता था, पर नैरुक्तों के मत में वृत्र मेघ बादल की संज्ञा थी। ऐतिहासिक संप्रदाय के प्राचीन तथा आधुनिक विद्वान जिन वैदिक सूक्तों एवं मंत्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के संकेत होना प्रतिपादित करते हैं उनमें से कतिपय का उल्लेख करना विषय को स्पष्ट करने के लिए उपयोगी होगा। सहदेव शोमक और देवापी शांतनु के संबंध में जो सूचनाएं ऋग्वेद में हैं उन्हें ऊपर लिखा जा चुका है। कतिपय अन्य महत्वपूर्ण संकेत व सूचनाएँ निम्नलिखित हैं।